जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना राध माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय कौरानिताय जय कौरानिताय कौरानिताय जय कौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौरा हरि बोल
शिष्य राधा गोविंद भगवान की जय शिष्य सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की जय पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। तुम्हारे आज का श्लोक है स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 35। या वा कचित् काचित्त्वम् अबले दिष्टाय संदर्शनम् तव उत्सुनोषि क्षमाणानाम् कन्दो क्रीडाया मनः या वा कचिता त्वमबले दिष्टाय संदर्शनोत्तम उत्सुनोषि क्षमाणानाम् कन्दो क्रीडाया मनः यावाकाचितं त्वं बले दिष्टाय संदर्शनं तव उत्सुनो शिक्षमाणानां कन्दो क्रीडाया मनः। यावाकाचित्त्वं बले दृष्ट्या संदर्शनं तव उत्सुनो शिक्षमाणानां कन्दो क्रीडाया मनः। यावाकाचित्त्वं बले कन्दो क्रीडाया मनः। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे सुंदरी बाला, दोहरा सकते हैं, हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। असुर लोग सुंदरी स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेल का आयोजन विपरीत लिंग के साथ करते हैं। ऐसा आयोजन का उद्देश्य सुंदरी बालाओं के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भावना का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथा कथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए गए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीने में ईश्वर बन सकता है। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। ये तथाकथित योगी योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं, किंतु भगवत गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्ण अवस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता, रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। आत्मिक जीवन में हम आनंद इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक या आत्मिक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। भागवत में कहा गया है, ब्रह्म सुखाय, अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रिझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकान्ति। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वंशाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में वर्णन जो किया गया है वो किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो एक स्त्री का रूप धारण करते हैं और किस प्रकार से असुर उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, तो ये मैत्रेय जी विदुर जी को इस बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से पहले श्रीमद् भागवतम के गुणों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन देते हैं दिल्ली में 1975 में, और उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जो है वो क्या है कि भागवत में ही वर्णन है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे वो श्लोक में, निगम कल्प तरो गलितम फलम। जो ये श्रीमद् भागवत है ये निगम कल्पतरो, तो कल्पतरो का मतलब है डिजायर ट्री, जो भी इच्छा हो वो व्यक्ति की पूर्ण हो जाए। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, जिसका अध्ययन करने मात्र से क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति की सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, है ना। तो ये जो निगम शब्द है श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसका मतलब है वैदिक ज्ञान। जितना भी वैदिक शास्त्र है, जितने भी वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए पुराण उपनिषद, इन सभी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गलितम मतलब पका हुआ फलम, जो फल है वो है श्रीमद् भागवत। और ये सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, जैसा कि भगवान के धाम के बारे में भी वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंता मणि प्रखर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रसेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। तो कहते हैं चिंता मणि प्रखर सद्मशु कल्प वृक्षा, तो कल्प वृक्ष और कल्पतरु एक ही चीज है ना। और जिस प्रकार से वैष्णवों को भी जब हम प्राण प्रणाम करते हैं तो कहते हैं वांशा कल्पतरु भस्य, तो वो भी कल्पतरु के समान। तो मतलब देखें तो भगवान का धाम कल्प वृक्ष है, भगवान के जो शास्त्र है वो कल्पतरु है, भगवान के जो भक्त हैं वो भी कल्पतरु हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कल्पतरु और कल्प वृक्ष में कोई भेद नहीं है, तरु मतलब पेड़, वृक्ष भी मतलब पेड़ है। तो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, पर उसके लिए व्यक्ति को अपराध रहित होकर के श्रीमद् भागवत का शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, श्रीमद् भक्तों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक अपने आप में भक्ति से, भक्ति की शक्ति से परिपूर्ण है। कोई व्यक्ति बोले कि मैंने तो प्रथम स्कंद ही पढ़ा है, अभी तो मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं या मैं भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है।
प्रभुपाद कह रहे हैं अगर जीवन में श्रीमद् भागवत का एक भी श्लोक व्यक्ति ने पढ़ा हो और उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करे, एक एक श्लोक अपने आप में शक्ति से परिपूर्ण है, फुल ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसीज एंड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से कहते हैं कि ये भागवत है, इसका वर्णन भागवत क्यों कहा जाता है, क्योंकि भागवत वो है जिसमें भगवान के बारे में गुणगान हो और भगवान के भक्तों के बारे में गुणगान हो। तो भागवत मतलब कि जो भगवान से जुड़े हुए हैं, और जो भी चीज भगवान से जुड़ जाती है वो भागवत बन जाती है। अगर शास्त्र भगवान से जुड़ जाए तो वो भागवत बन जाता है, अगर भगवान का गाना भगवान गाते हैं तो वो भगवत गीता बन जाता है, गीता मतलब गाना, और जब भगवान के भक्त भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो भागवत भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत को अगर हमें सुनना है, श्रवण करना है, समझना है, तो बताते हैं चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, भागवत परागिया भागवत स्थाने। भागवत को समझने के लिए भागवत भक्त के पास जाना चाहिए, भागवत परागिया भागवत स्थाने, भागवत भक्त के पास जाकर ही भागवत को समझाया जा सकता है। तो कई लोग होते हैं जैसे हम लाइफ मेंबर्स बनाते हैं और उनको हम श्रीमद् भागवत गिफ्ट देते हैं, कहते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, वो भक्त लेते भी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत को पढ़ने पर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, उनको ज्ञान समझ नहीं आता है किस प्रकार से भगवान की शरण जाना चाहिए। तो उन लोगों से अनुग्रह ये किया जाता है कि आप मंदिर में आकर के श्रीमद् भागवत को सुनिए, है ना, और अपने घर पर भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो भागवत है ये निगम कल्पतरो गलितम फलम है, पका हुआ फल है, अगर ये हाथ से छूट जाए तो ऐसे करके ना बिखर भी सकता है ना, अगर पका हुआ फल हो और वो हाथ से गिर जाए तो क्या होता है, छूट जाता है। ऐसे ही इसको ग्रहण करने के लिए क्या है, भागवत परागिया भागवत स्थाने, भागवत के पास जाकर इसको सीखा जा सकता है। तो ये दो प्रकार के भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत है श्रीमद् भागवतम, और व्यक्ति भागवत है हमारे परम वैष्णवास आचार्य जिनके द्वारा हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि ये जो आप लोग जो बोलते हैं, हम कैसे माने कि आप लोग जो है वैष्णव है। अब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा है, अपने अपने अनुसार उसने उस चीज को समझा है, चाहे वो क्लास में बैठ करके सुने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एज इट इज नोट्स नहीं बना पाते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, फिर कुछ और किसी से सुनते हैं, फिर किसी भक्त से सुनते हैं, और सब लोगों का वो मिलकर के कुछ और हम बोल रहे होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने एक बार पूछा कि प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि हर एक श्लोक भक्ति से परिपूर्ण है और मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको एज इट इज पालन करिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो शास्त्र है जहां से आपने इनको लिखा या ट्रांसलेट किया ये परिपूर्ण है अपने आप में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बच्चा है, जब वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये क्या है, मोबाइल फोन को दिखा करके पूछे ये क्या है, तो पिता क्या बोलेंगे, ये मोबाइल फोन है। तो वो पिता के ऊपर विश्वास करके अगर उससे पूछा जाए बेटा ये क्या है, तो क्या बोलता है, ये मोबाइल फोन है। वो ऐसा नहीं करता अपनी बुद्धि लगा के ये मोबाइल फोन कैसे हो सकता है, मम्मी तो इसको टेलीफोन कहती है ना, या फिर इसको तो दादू तो इसको सेल फोन कहते हैं, लेकिन वो उसको मोबाइल फोन बोलने लग जाता है क्योंकि उसके पिता ने कहा, उसको अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है उस बच्चे का ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, वो नहीं जानता मोबाइल फोन सेल फोन और टेलीफोन में क्या डिफरेंस है, लेकिन वो एक चीज जानता है कि मेरे पिता ने जो कहा है वो सही कहा है। ऐसे ही जो ये शास्त्र है जो कि भगवान के शक्ति आवेश अवतार श्रीम व्याद वेद द्वारा लिखे गए, वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं, ऐसे शास्त्रों पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं उसी विश्वास से आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, हो सकता है कि मेरा ज्ञान अधूरा हो, मैं अपूर्ण इंद्रियों का हूं, पर मैं जो कह रहा हूं वो परिपूर्ण है, इसलिए इसका एक एक श्लोक शक्ति से परिपूर्ण है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ पर श्लोक में वर्णन बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक श्लोक अपने आप में, ये नहीं कहना चाहिए कि अरे अरे ये वाला श्लोक बहुत उत्तम है, वो वाला श्लोक उत्तम नहीं है, हम कौन है कंपेयर करने वाले कि ये उत्तम है वो उत्तम नहीं है, ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी शिक्षक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शिष्य की योग्यता के अनुसार अभी वो गुहितम तत्व को नहीं समझ सकता, कम से कम ये मुख्य श्लोकों को समझ ले, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा श्लोक दूसरे श्लोक से वो खराब है या बेकार, हर एक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। शिष्य राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व गौड़ निताय की जय, पतित पावन शूल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत। तो यहां पर कहा गया है, मैत्री जी कहते हैं, यावा काचित त्वं बले दुष्टाया संदर्शनम तव उत्सुनो शिक्षमाणानां कंदुक्रीडाय मनः। तो यहां पर इसका मतलब है कि सुंदर बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तो ये जो असुर है ये स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित है। तो यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यही बताया गया है कि गेंद खेलती हुई तरणी को देखा, कभी कभी असुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंग के साथ करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं लॉन टेनिस जैसे मैच देखते हैं, तो लॉन टेनिस उनको समझ में आए ना आए, लेकिन लॉन टेनिस में खेलने वाली जो स्त्रियां हैं उनके प्रति आकर्षित रहते हैं और उसको बोलते हैं कि हम लॉन टेनिस प्लेयर के, लॉन टेनिस गेम के प्रति बड़े आकर्षित हैं। और आज भी देखा जाए तो भौतिक संसार में जितना भी कार्य चल रहा है ये सब शारीरिक रूप पे चल रहा है ना। जितने भी फिटनेस क्लब है, फिटनेस क्लब के पीछे मुख्य क्या आयोजन है, उनका प्रयोजन क्या है फिटनेस क्लब खोलने के पीछे, कि सुंदर शरीर बने और उसके बाद हम दूसरे अपोजिट जेंडर, अब विपरीत लिंग को क्या कर सके, आकर्षित कर सके। यही तो कारण है, वरना व्यक्ति को फिटनेस में जाने की जरूरत क्या है। अगर वो खाली पैदल चले और लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करे तो अपने आप में ही वो शारीरिक स्वस्थ रह सकता है, लेकिन फिटनेस क्लब्स में जाते हैं ताकि वो सुंदर शरीर पाकर दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सके, है ना। और इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, उसके पीछे भी क्या कारण है, लोग हजारों हजारों रुपयों का खर्चा करते हैं। जो पुरुष हैं वो लंबे लंबे बाल करते हैं और स्त्रियां छोटे छोटे बाल करती हैं, है ना, और सिर्फ इसी कार्य में लगे हुए और बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करते हैं और फिर खर्चा करते हैं। अभी तो पुरुषों के लिए भी क्रीम आ गया है ना, हैंडसम मैन, है ना, हैंडसम मैन क्रीम। पहले तो खाली स्त्रियां ही फेयर एंड लवली लगाती थी, अभी तो पुरुष भी हैंडसम क्रीम लगाते हैं। सोचिए हालत कैसी होती जा रही है। और वो पूछते भी हैं भक्तों से, है ना। एक दिन एक भक्त पूछ रहे थे, मतलब प्रोग्राम में, एक हाउस प्रोग्राम में, कि आप लोगों के सारे भक्त इतना चमकते कैसे रहते हैं, लगता है आप लोग हैंडसम क्रीम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इनके पीछे हैंडसम क्रीम नहीं है, इसके पीछे जो है भगवान के हरि नाम की शक्ति है। क्योंकि भक्त जो होता है वो भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान जो होते हैं वो हमेशा तेजोमय रहते हैं, और वो भक्त जो 24 घंटे भगवान से जुड़ा रहेगा वो भी कैसा रहेगा, तेजवान रहता है ना। तो उसकी जो ओज होता है, क्योंकि वो अपने वीर का स्खलन नहीं करता, क्योंकि वो अपने भगवान के दिव्य शक्ति से जुड़ा रहता है, इसलिए वो चमकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर प्रोग्राम से पहले हिमालय का फेस वॉश लगाते हैं और उसके बाद फिर हैंडसम क्रीम लगाते हैं, उसके बाद तिलक धारण करके प्रवचन देने आते हैं, ऐसा नहीं है ऐसा। लेकिन ऐसा चल रहा है, कई कई भागवत कथा प्रोग्राम्स आयोजन होते हैं, वहां पर कोई मुझे बता रहा था कि वो जो महाराज लोग जो लेक्चर देते हैं, भौतिक प्रचार कर रहे हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो लोग अपने कथा प्रवचन से पहले 1.5 घंटा ब्यूटी पार्लर में गुजारते हैं, ऐसा वर्णन था। तो आप सोच सकते हैं अभी भागवत को किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है। तो हम एक भक्त के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम, है ना, घर घर जाकर के प्रचार करें कि सच्ची भागवत कथा क्या है, तो और शिल प्रभुपाद को एक एक घर में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जैसे ही असुर है ऐसे ही असुर घर घर में है, है ना। और हम लोग भी असुरी थे इस्कॉन में आने से पहले, और अभी भी आसुरी प्रवृत्तियां बहुत बाकी हैं, क्योंकि कभी कभी जब रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो हमारी प्रवृत्ति आसुरी होती है। बहुत मुश्किल है कि सतोगुण में सदा विराजमान रहे, उसके लिए महान वैष्णव आचार्य गणों के दिए गए आदेश का पालन करते रहे तो सतोगुण में रह पाते हैं, अन्यथा बहुत ही आसानी से हम लोग सतोगुण से गिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सुख के बारे में वर्णन करते हैं, तो एक श्लोक है जिसमें कहते हैं आजकल सभी जीव आत्माएं जिनको ये भौतिक शरीर मिला था भगवान की सेवा करने के लिए, साधन शरीर मिला था साधना करके साध्य की प्राप्ति के लिए। साध कौन है? कृष्णा। टारगेट है कृष्णा और साधन शरीर है ये, इससे करते हैं साधना। लेकिन अभी साधन शरीर से हम करते हैं भौतिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, और इसीलिए साध्य को भूल गए कहां जाना है। ऐसे ही है जैसे किसी से पूछो मंदिर क्यों जा रहे हो, तो मालूम ही नहीं होता कि क्यों जा रहे हैं। कोई शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहा होता है, कोई दुर्गा पर आरती करने जा रहा होता है, और भगवान कृष्ण के मंदिर में भी आते हैं, कहा सुना है दीप दान करने से चूहे को मोक्ष मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा। ऐसे करके लोग आते हैं बहुत सारे मंदिर में, वो जानते नहीं है मंदिर में आने का विशेष कारण क्या है। मंदिर में आने का विशेष कारण है साधु संघ, भक्तों का संघ। ये भक्तों का संघ, भगवान के भक्तों की कथा, भगवान के भक्तों के आलिंगन मात्र से, उनके द्वारा दिए गए उच्चिष्ट प्रसाद के मात्र से व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, है ना। भागवत में कहते हैं नूनम प्रमत्त कुरतो विकर्म यद इंद्रिया प्रीति आप्रणोति न साधु मन्ने यत आत्मनोयम सन्नापि कलेशाद सह देह। नूनम प्रमत्त कुरतो विक्रम, लोग वित्ती इतने पागल हो गए हैं कि विकर्म करने में लग गए हैं। एक होता है कर्म, एक है विकर्म। कर्म शास्त्र की दृष्टि से किया जाने वाला, विकर्म शास्त्र के विपरीत किए जाने वाला कर्म। और ऐसे लोग हैं जो विकर्म में लग गए हैं और नीचे की योनियों में जाने के लिए तैयार हैं, है ना। लेकिन फिर भी कितने पागल हैं, वो जानते हैं कि फल क्या है। जैसे सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस, है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भक्त को पकड़ लिया, वो माउंटेन ड्यू पी रहे थे। तो मैंने कहा आप माउंटेन ड्यू क्यों पी रहे हैं? कह रहे मंदिर में स्प्राइट मिलता है, ये उसकी बहन है, इसलिए मैं माउंटेन ड्यू पी रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप माउंटेन ड्यू पी रहे हो, उस पर लिखा हुआ है, देखो, घुमा करके दिखाया तो बाकी चीजें छोटी छोटी लिखी है, बड़ा बड़ा लिखा है कंटेन्स कैफीन, बोल्ड लेटर्स में इतना बड़ा लिखा है। मैंने कहा आप जानते हैं कैफीन लिखा है फिर भी आप पी रहे हैं? कह रहे नहीं प्रभु जी, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमें लगा हरे रंग की बॉटल स्प्राइट है, हरे रंग का ही है। मैंने क्यों हरे सफेद के चक्कर में पड़ रहे हो, सोच लो हमें पीना ही नहीं है, फिर आप खुश रहोगे। तो इतने पागल हैं कि बस, अच्छा ये मना किया गया काले वाला तो ये वाला पी लेता हूं, अच्छा चाय मना की गई है तो हर्बल टी पी लेता हूं। तो हम इतने ज्यादा भ्रमित हो गए हैं कि हम कैसे भी करके अपने स्वाद इंद्रिय तृप्ति से, भोग विलास से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, है ना। तो नूनम प्रमत्त कुरुतो विकर्म, हम विकर्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कई बार। अभी देखिए वो भक्त है, जब करता है 16 माला फिर भी बेचारा क्या हो गया, भ्रमित हो गया, हरे रंग की बोतल के प्रति आकर्षित हो गया। तो जो ये भौतिक संसार के टीवी मीडिया वाले हैं, ये तो चाहते हैं कि हम जैसे भी असुर बन जाएं। आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी फेयर एंड लवली क्रीम बिकता है, अभी सोचिए वहां कैसे बदलाव आएगा। यहां पर तो दिखाते हैं कि 15 दिन पहले एक जिस स्त्री का रंग काला था वो भी गोरी हो गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर गोरा पोस्टर लगाएंगे तो वो तो खरीदेंगे ही नहीं। तो वहां पर बहुत काली दिखाते हैं और उसके बाद में फिर परिवर्तित होते हुए थोड़ी कम काली स्त्री दिखाते हैं और कहते हैं फेयर एंड लवली का फर्क देखिए, है ना। तो ऐसे ही ये जो विज्ञापन वाली कंपनियां हैं, हमने भी पढ़ाई की है और मैनेजमेंट में हमको सिखाया जाता था कि कैसे व्यक्ति की मेंटलिटी से खेलना चाहिए, है ना। कहते हैं जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का रुपया है 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको 150 रुपए का बना लो एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और 150 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर अब आप डिस्काउंट कर दो, है ना, दीपावली ऑफर। अब क्या कर दो, 130 रुपए का प्रोडक्ट रख दो, 20 रुपए का साबुन फ्री कर दो उसके ऊपर। अभी क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति इसलिए नहीं खरीदेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, इसलिए कि दीपावली पे साबुन फ्री मिल रहा है और मेरे मल और मैल को धो सकता है, और वो फिर उसको खरीद लेता है। वो भूल जाता है कि अगर उसी प्रोडक्ट को पहले कभी देखा हो या उसमें बहुत रिसर्च की गई हो तो 100 रुपए का ही उत्पादन कार्यक्रम था खाली। तो आप देखिए कि कैसे मेंटलिटी से खेलते हैं, और हर जगह जगह पर इतने बोर्ड्स लगाते हैं जिन ब्रांड्स को आप ऑलरेडी जानते हैं, सैमसंग, है ना, गोदरेज, बार 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 आपको दिखाया जाएगा, हर जगह जगह कॉर्नर पे बोर्ड लगे हैं। क्यों? वो कहते हैं कि इतनी बार इनके दिमाग पर हैमर करो कि ये प्रोडक्ट इनको लगने लगे। अभी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मुझे कोको कोला ब्रांड वाला कोल्ड ड्रिंक देना, अभी तो नाम ही हो गया है कि मुझे कोको कोला देना, है ना। ऐसी तरह से इतना मेंटलिटी से खेलते हैं कि परिवर्तित हो जाता है हमारा पूरा का पूरा, सोचने की दृष्टि बदल जाती है। ऐसे भक्त को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, हर जगह जगह ब्रांडिंग करें, अपने घर के अंदर हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र लगाएं, अपनी कार के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र लगाएं, अपने बच्चों के स्कूल के कॉपीज पे हरे कृष्ण महामंत्र लगा दें, अपने घर के अंदर बड़े बड़े फोटोज लगा दें, अपने मंदिर के चारों तरफ लगाएं, अड़ोसी पड़ोसी के घर के ऊपर अगर लगा सकते हैं लगा दें, रोड्स पे इस्कॉन के बैनर्स लगाएं ताकि भक्त जहां चले उसको क्या याद रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इस तरह से वो क्या हो सकता है, जो अपनी प्रमत्तता है, एक होता मत मतलब पागल, एक प्रमत्त मतलब पूरी तरह से पागल है वो व्यक्ति, बस दौड़ा चला जा रहा है एडवर्टीजमेंट्स के पीछे, है ना। और इसीलिए इतने सारे भागवत पंडाल होते हैं और लोग उनके अंदर 5,000 लोग जाते हैं क्योंकि उनका ब्रांडिंग है। लेकिन हम हमारे इस्कॉन केंद्रों में लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि हम सीधे साधे भक्त बस प्रभुपाद जी के प्रवचन को ही फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम ब्रांडिंग पर ध्यान दें तो हमें ब्रांडिंग पे, कौन सी ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, प्रभुपाद जी ने जो बोला है वही तात्पर्यों को लोगों के बीच में रखें और अपने आप में ही वो भक्त जो बनना चाहेंगे अपनी भक्ति उन्मुख सुकृति के द्वारा आ जाएंगे और भक्त बन जाएंगे। बहुत विशेष ब्रांडिंग की आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन प्रयास पूरा करना चाहिए। जैसे अभी मैराथन आएगा, घर घर जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई प्रोग्राम हो जन्माष्टमी का, घर घर जाकर के हमें बताना चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि घर घर जाकर के प्रचार करो, एक एक घर में। आप देखिए कि इतनी प्रमत्ता है कि व्यक्ति क्या करता है, दूसरी योनि में सन्नापि कलेशदा अस देह, वो छोटी योनि में जाने को भी तैयार हो जाता है। ऐसे है लोग प्रमत्त, अपनी पोजीशन डेजिग्नेशन धन से इतने प्रमत्त है कि पूछे ही क्या। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव का प्रसंग आजकल हम प्राय रोज सुनते हैं दामोदर लीला में, वो लोगों के श्राप पाने का कारण क्या था। तो लोग बोलते हैं कि इन्होंने गंगा जी में जब प्रवेश किया, गंगा जी थी मंदाकिनी, स्वर्ग की गंगा जी, एक है गंगा जी यहाँ पर भागीरथी पृथ्वी पे बहने वाली, और एक गंगा जी जो नीचे के लोकों में बहती है भोगवती के नाम से जानी जाती हैं। तो मंदाकिनी रूपी गंगा में जब उन्होंने प्रवेश किया, स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, यहाँ पर भी वही वर्णन है, विपरीत लिंग के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। थे तो वो देवता के पुत्र, कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर, परंतु उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, आसुरों जैसी, क्योंकि पर दूसरी स्त्री के साथ में, पराय स्त्री के साथ में वो क्या कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ में विपरीत लिंग के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं, गंगा जी जैसी महान पवित्र नदी में जो विष्णु चरणों से निकलने वाली है, उनके नदी के किनारे प्रणाम करके उनके अंदर प्रवेश करके उन्हीं का जल उन्हीं में आचमन देने से वो कहते हैं कि मैं पवित्रता प्रदान करती हूं। ऐसी गंगा नदी के अंदर क्रीड़ा करने लग गए, वो भी विपरीत लिंग के साथ में, ठीक है, इतना भी मंजूर था। जब नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ साधु वहां आए तब भी वो क्या कर रहे हैं, प्रवृत्त लगे पड़े अपने क्रीड़ाओं के अंदर, है ना। यहाँ पर जैसे वर्णन है, कंदु क्रीड़ाया मन, अपना क्रीड़ाओं में उनका मन लगा हुआ था और खेल रहे थे। तो क्यों वो साधु के आने पर खड़े नहीं हुए, क्योंकि दो कारण थे उनके पास में। पहला विशेष कारण था कि उनको ये था घमंड कि मैं तो कुबेर का पुत्र हूं, है ना, मेरे पास तो बहुत धन है। कुबेर के पास, कहते हैं ना, कोई भी अकाउंटेंट होता है मंदिर में, कहते हैं ये तो कुबेर का सेवा करते, कुबेर की सेवा करते हैं, कुबेर मतलब जहां पर धन। तो कुबेर के पास में इस स्वर्ग आदि लोगों का सभी का धन उनके पास में है, है ना, ट्रेजरर कह सकते हैं। ऐसे कुबेर के अगर पुत्र हैं तो उनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, और देवता है स्वर्ग लोक के, अपनी पोजीशन का भी घमंड है, और ऐसे प्रमत्ता के कारण क्या करते, नूनम प्रमत्ता कुरुतो विकर्म, और इसीलिए कारण, इस प्रमत्ता के कारण उन्होंने विकर्म किया। क्या विकर्म किया, कि साधु के आने के बाद भी वो अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। और क्या उनको फल मिला, नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि आपको वृक्ष योनि मिलेगी। तो एक व्यक्ति, में जब ये दामोदर लीला भी कहीं पर बोल रहा था, तो एक भक्त पूछ रहे थे, आप हर बार जो कपड़े नहीं पहनता उसको वृक्ष क्यों बना देते हैं, है? जानवर भी तो कपड़े नहीं पहनते हैं। मैंने कहा आपकी जैसी इच्छा है आपको वैसे ही शरीर मिलेगा, आप चिंता मत करिए, वो मतलब उनको बड़ा फेवरेटिज्म था जानवर के प्रति, तो मैंने कहा जिसकी रही भावना जैसी वैसे ही उनको भगवान देंगे ना। भगवान कहते हैं ना अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम, अंत में जैसा स्मरण करोगे जैसा भाव रखोगे वैसा ही तुमको शरीर मिल जाएगा। तो मैंने कहा आपको जानवरों के प्रति बहुत स्नेह है कि आप हर बार पेड़ का एग्जाम्पल देते जानवर का नहीं देते, तो आप जानवर बन सकते हैं अगर आप वस्त्र नहीं पहनेंगे तो। तो कहते ही इवन हमको स्नान आदि करते वक्त कैसा रहना चाहिए, हमेशा अपने शरीर को ढक करके रखना चाहिए। हाँ, गंगा आदि नदियों में स्नान करें विशेष करके, इवन अपने घर पे भी स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल के देवता हैं वरुण, उनके प्रति अपराध हो जाता है ना, और वो अपराध होने से क्या होगा कि हमारी भक्ति क्षीण हो सकती है। अपराध ना हो इसके लिए हमको विशेषकर अपने शरीर को ढक करके अर्धवस्त्र कम से कम माता है पूर्ण वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। और आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत में इसी प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, यस आत्मा बुद्धि कुनो पित्री धातु के। और ये सारे लोग वही हैं जो ये सोचते हैं यस आत्मा बुद्धि, उनको कोनो पित्री धातु के, उनको लगता है हमारा शरीर जो है वो तीन धातु का बना है, बस यही मैं हूं, कफ पित्त और वात, है ना। हमारा शरीर आयुर्वेद कहता है तीन इस चीजों से बना है, कफ पित्त और वात, और इन्हीं के डिसबैलेंस हो जाने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वो कफ के वाले को कफ ठीक करने की दवाई, पित्त वाले को पित्त, वात के लिए वात। तो कफ मतलब होता है म्यूकस, जैसे ही गले में जो आ जाता है, और पित्त होता है मतलब हमारा जो बाइल जो गॉल ब्लैडर से निकलता है जूस ऐसा, और वात मतलब एयर वायु रोग जो होते हैं। ऐसे म्यूकस बाइल और जो एयर है इस तीनों के मिश्रण से बने शरीर को ही यस्य आत्मबुद्धि कोनोपि त्रिधातु के, उसको लगता है हम तो तीन ही धातु के बने हुए हैं, हम आत्मा थोड़ी हैं। और ऐसा ही व्यक्ति क्या करता है, नूनम प्रमत्थ कुरुतो विकर्म, और वो विकर्म आदि कार्यक्रमों में लग जाता है, और अपनी जो उसको शक्ति है अपने शारीरिक शक्ति के ऊपर बहुत ही घमंड रहता है। इसलिए देखेंगे लोग जप करने की बजाय क्या करेंगे कि अपने घर के बाहर लाइट लगाकर बैडमिंटन कोर्ट बना लेंगे और फिर रात दिन उसमें मेहनत करते रहेंगे। मैंने भक्तों को भी देखा है, मंदिर भी आते हैं जब भी करते हैं और फिर शाम को वो क्या करते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, और बोलो तो क्या हा? तो वो बोलते हैं भगवान प्रभु मतलब प्रभुपाद को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं कि हमको ये बोला गया है कि शरीर तो साधन है, अगर इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तो शास्त्रों में सिर्फ दो ही खेलों को प्रमाणित किया गया है, एक है रेसलिंग करना कुश्ती करना और दूसरा है स्विमिंग करना। अगर कोई व्यक्ति खेलना भी चाहे तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के संग में उसको या तो स्विमिंग करना चाहिए सरोवर आदि में या फिर कुश्ती करना चाहिए, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम कोई भी खेल खेलेंगे तो उस खेल के पहले थोड़ा सा क्या बताना चाहिए, शास्त्र बताना चाहिए। तो कुश्ती के बारे में जब अगर कोई भक्त जाए कभी ग्रुप में मिलकर, यूथ के भक्त जा रहे हैं या गृहस्थ भक्त जा रहे हैं तो पुरुष आपस में कर सकते हैं, तो बोले कुश्ती कर रहे हैं तो वो एक तो कुश्ती हमारा पौराणिक खेल है और उससे हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है, क्योंकि भगवान जहां भी खेले हैं वहां पर कुश्ती खेलते हैं, है ना। कंस के वध से पहले भगवान ने क्या किया, मुष्टिक चाणूर आदि को कुश्ती के खेल में हराया था, है ना, रेसलिंग किया था। और इवन जब देखें प्रलंबासुर का वध करने से पहले भी भगवान जो है वो रस्सा कसी और कुश्ती के खेल को ही प्रमुखता दे रहे हैं। तो जब हम ऐसा खेल खेलने जाएं तो इस लीला का स्मरण कर सकते हैं, भगवान ने कुश्ती करी, चलो हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं को खेलते हैं एक प्रकार से। या फिर स्विमिंग करें तो हम स्मरण कर सकते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से कालिया नाग का दहन किया, किस प्रकार से भगवान ने बच्चों की गेंद को नीचे से निकाला और एक विषैले कामी जो नाग था उसका दहन कर दिया। तो इस तरह से कालिया नाग की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। तो इस तरह से शास्त्र में वर्णन की दो खेल भक्त खेल सकते हैं, लेकिन टेनिस खेल बैडमिंटन रेसिंग या वेट लिफ्टिंग ऐसे खेल बताए नहीं गए। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो विकर्म कर रहा है, क्योंकि शास्त्र में बताया नहीं गया। नूनम प्रमत्त कुरुतो विकर्म, वो प्रमत्त हो गया है और सोच रहा है, पैशनेट उसका रजोगुण बढ़ गया है और वो सोच रहा है मेरी बॉडी को फिट रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को जब बोला गया, प्रभुपाद जी का शरीर बहुत ही दुर्बल था और प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा आप एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, और प्रभुपाद जी हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन को कहते थे ये जहर है, मैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लूंगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि वो आयुर्वेद में स्टडी किए थे, वो बिजनेस करते थे, उनको वही प्रेम था और उस पर उनका पूर्ण विश्वास था। लेकिन भक्त बोले कि नहीं नहीं प्रभुपाद जी, आपका शरीर थोड़ा अभी ऐसी स्थिति में आपको लेना चाहिए। तो डॉक्टर जब आया तो उसने कहा, देखिए आपके लिए दो नियम बड़े विशेष हैं। पहला नियम कि आपको जो है ना सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और दूसरा आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। मतलब 70 साल की अवस्था में न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, पेरिस जैसे शहरों में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ भी प्रभुपाद जी ठंडे पानी से स्नान करते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी का बिल्कुल नेचुरल चीजों के प्रति, प्राकृतिक प्रकृति जो भगवान के द्वारा बनाई गई है उसके प्रति भगवान के भक्त का भी समर्पण होना चाहिए। तो उन्हीं से जुड़े रहते थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी दो बातों में से एक बात मान लेता हूं। क्या? कि मैं ना ठंडे पानी से नहाना तो नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर सकता हूं। और फिर प्रभुपाद जी डेली मॉर्निंग वॉक अपना करने लगे। तो ये जो वॉक करना है ये फिर भी आचार्यों के द्वारा किया जाता है तो उसको भी हम प्रमाणिक मान सकते हैं, परंतु टेनिस खेलना या वेट लिफ्टिंग करना या जिम जाना, बहुत सारे भक्त भी जिम जाते हैं आजकल, लेकिन ऐसा शास्त्रिक नहीं है। बाकी अपने गुरुजनों से पूछ करके अगर कोई कार्य किया जाए तो वो विशेष सही रहता है। यहाँ पर वर्णन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थानों में जाए जैसे कि मणिग्रेव और नल कुबेर गंगा जी में स्नान करने गए थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर के भक्तों का संग नहीं किया, क्रीड़ाएं आदि करी, तो कहते हैं वो कैसे है, स एव गोखरहा, जैसे गाय और गधे क्या करते हैं, जब ये जंगल आदि नदियों से निकलते हैं तो वहां पर स्नान करते हैं। आपने देखा है भैंसे नहाती हैं, गाय नहाती हैं, गधे नहाते हैं, वैसे ही है कोई व्यक्ति यहाँ से हरिद्वार चढ़ करके जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है, और वहां भक्तों का संग ना करके, कथा कीर्तन श्रवण ना करके, रीडिंग ना करके क्या करता है, गंगा जी में स्नान करके सोचता है मैं अपने पापों से निवृत्त हो गया हूं। ये भौतिक बुद्धि है, वरना वो कैसा है, स एव गोखरहा, गाय के जैसा है और गधे के जैसा है। तो हमें अगर इस प्रमत्ता से बाहर निकलना है तो विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं पर भी जाएं सदा भक्तों के साथ में जाएं। श्रील प्रभुपाद तो यहां तक कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को मंदिर के सेवा के लिए भी जाना है तो अकेले नहीं जाना चाहिए, उस दो भक्तों को साथ जाना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद श्रीधर महाराज को लेकर के और फिर प्रचार करने के लिए जाया करते थे या कलेक्शन करने के लिए जाते थे। हमें भी हमेशा भक्तों के संग में जितना हो सके, कोई विषम परिस्थिति हो जैसे प्रभुपाद जी को अमेरिका जाना पड़ा तो अकेले जाना पड़ा, तो प्रभुपाद जी ऐसी अवस्था में कहते हैं इफ यू डोंट हैव एसोसिएशन देन क्रिएट योर एसोसिएशन, अगर भक्त संग नहीं है तो भक्त संग बनाओ, शास्त्र तो है, शास्त्र पढ़ो, दूसरों को बताओ और फिर उनको भी बोलो आप जप करो और उनके साथ में आप रह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जहां भी कोशिश करें भक्तों के संग में रहें, वरना इस प्रमत्ता के कारण व्यक्ति को क्या होता है, जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र हाथी इतना प्रमत्त था कि त्रिकुट नाम के पर्वत पर क्षीर सागर में 10,000 योजन के बड़े पर्वत पर वो घूम रहा है, टहल रहा है, और उसको इतनी प्रमत्ता है कि उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके आने से वहां जंगल के सिंह आदि भी भाग जाते थे कि अरे गजेंद्र आ रहा है, गजेंद्र आएगा ना तो हमको पूरा तहस नहस कर देगा। अन्यथा देखा यह गया है कि शेर की शक्ति जितनी है कि वो हाथी को भी गिरा सकता है, लेकिन गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि वो जब चलता था तो सिंह आदि भाग जाते थे उसको देख करके। ऐसे गजेंद्र इतना प्रमत्त था अपनी शक्ति में कि वो भूल गया कि मैं कौन हूं, हाथी हूं, और मैं जो हूं जल के अंदर क्रीड़ा करने के लिए प्रवेश कर रहा हूं, और इस जल में कौन हो सकता है, मगर हो सकता है, ग्रह हो सकता है, और उस मगर के अंदर ग्रह हो सकता है, उस जल के अंदर मगर या ग्रह हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है, लेकिन उसने क्या कहते हैं ना, डोंट थिंक सो मच दैट देयर इज मगरमच्छ, है ना, उसने सोचा नहीं बहुत ज्यादा और वो घुस गया अंदर, और वहां पर क्या हुआ, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने, ग्रह ने उसे पकड़ लिया, अभी कांट डू टू मच, है ना, ऑलरेडी होल्ड बाय मगरमच्छ, वो पकड़ लिया गया है मगरमच्छ के द्वारा, भी कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जल के अंदर मगरमच्छ की शक्ति अधिक है और हाथी की शक्ति कम है, और मगरमच्छ उसको खींच रहा था और वो बाहर खींच रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो है ना अपनी अभिलाषाओं को छोड़ा नहीं। ऐसे लोग मरते दम तक भी आसरी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं है। आप देखिए जितने भी हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ कई बार मिलने के लिए या प्रोग्राम्स के लिए, एम्स आदि हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे भक्त कहते हैं कि चलिए यहाँ पर एक रिलेटिव है वो एडमिट है, जब मिलने जाओ तो देखते हैं कि उनकी बुरी हालत है, कैंसर हो गया है और अंतिम स्टेज में चल रहे हैं, फिर भी सामने टेलीविजन देख रहे हैं और उसमें भी कोई हीरो हीरोइन का पिक्चर देख रहे होते हैं, है ना। मरते दम तक भी वो आसरी प्रवृत्ति नहीं छूट रही। मैंने कहा कि कम से कम आप यहाँ लेटे हैं, यहाँ पर भगवान का भजन लगा के देख लीजिए आप, बोले नहीं नहीं उसमें तो क्या होता है कि मन विचलित हो जाता है, ये ठीक रहता है, इसमें एंगेज रहता है, 3-4 घंटे पिक्चर देखते हैं तो दर्द का एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता, ऐसी भावना है। अब देखिए असुर जो है व्यक्ति इस प्रकार के हैं कि अंतिम समय में भी उनका जो ये आकर्षण है छूटता नहीं। ऐसी गजेंद्र का अंतिम समय आकर्षण नहीं छूट रहा, अपने परिवार को आवाज लगा रहा है, ओ मेरी प्रिय हथनियों मुझको क्या करो, रक्षा करो। तो सारी पत्नियां भी कह रही हैं कि हाँ हाँ हम तुम्हारे जो पुत्र हैं पत्नी हैं छोड़ेंगे नहीं। सबने एक दूसरे की अपनी अपनी सूंड से दूसरे की पूंछ में क्या कर लिया, एक चेन बना लिया पूरा लंबा सा, और सब खींचने लगे उस गजेंद्र को, और जोर लगाकर खींचो, लेकिन पीछे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब थक गए, वो बोले कि अरे ये तो हमसे खींचा नहीं जा रहा, और हमारी सूंड में ना एकदम क्या हो गया है, दर्द होने लगा है। तो अपनी अपनी सूंड को निकाल कर वो छोटे छोटे हाथी तो चले गए, बोले देखेंगे कोई दूसरा पिता ढूंढ लेंगे, खाली गजेंद्री थोड़ी हाथी है ना, चले गए। और फिर जो हथनियां थी उनको भी कुछ देर बाद वो भी हार गई, और धीरे धीरे एक एक करके वो भी निकलने लगी, बोले कोई और हाथी ढूंढेंगे अपने साथ में अपने इंद्र तृप्ति के लिए, ये हाथी तो गया। तो इस तरह से होता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसा हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहा। तो आप देखिए हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को एक अटेंडेंट ढूंढने के लिए बिना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक अटेंडेंट नहीं होता उनके पास में। परिवार जो है वो 2-3 दिन की बीमारी हो तो फिर भी चल जाता है, अगर वो 1-2 वर्ष की बीमारी हो ना तो साथ में बैठने वाला कोई नहीं होता, परिवार भी कहता है कितनी देर तक इनके साथ बैठे रहे, है ना। हर एक व्यक्ति छोड़ करके कहता है एक व्यक्ति मर रहा है, हम क्यों मरे, हम तो अपने काम पे जाए। तो बिल्कुल भी मानवता नहीं है, वही व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे अंतिम काल में गजेंद्र ने भी क्या किया, जब वो समझ गया कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, किसको पुकारा, उसने पुकारा भगवान को, और क्या बोला जोर से, गोविंदा, क्या बोला, गोविंदा, उसने गोविंद को पुकारा, क्योंकि यही है जो ऐसे समय में रक्षा कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर गोविंद का नाम स्मरण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, है ना, अंत काले चमा में वो हीरोइन को देखते हुए मर जाएंगे और फिर एक सुंदर स्त्री बनकर के फिर दोबारा जन्म हो जाएगा, और यही चल रहा है। इसीलिए जो ऋषभदेव महाराज है वो अपने पुत्र को कहते हैं कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को इस भौतिक शरीर को ग्रहण करने के बाद, कहते हैं नायम देहो देह भाजाम नृलोके कृष्णान कामान अहरत विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धे दयस्मात ग्रह ब्रह्म सुखायम तुम अनंतम। वो कहते हैं नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जितने भी लोग शारीरिक अपने 7 दिन सेवा में लगे हुए हैं, 8 घंटे की नौकरी, फिर 10 घंटे की नौकरी, फिर 12 घंटे की नौकरी, ओवर टाइम, और फिर तर्क भी करते हैं, भक्त भी तर्क करते हैं, उनको बोलो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, कह रहे ज्यादा कमाएंगे ज्यादा दान देंगे। मैंने कहा जितना कमाया था उसमें से कितना दे दिया जो तुम ज्यादा कमा के ज्यादा दान दोगे, जितना कमाया था उसमें से कितना प्रतिशत दिया आपने, तो फिर चुप हो जाते हैं, कह ठीक है प्रभु जी लेकिन क्या करें, अभी तो हमारे ऑफिस की डिमांड है इतनी, क्या कर सकते हैं, फंसे हुए हैं। और अगर ऐसे फंसे हुए व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेंगे, किन चीजों का, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, उन्होंने कहा तपस्या करनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए, हमारे से जो भी गलतियां हो गई हैं उनके लिए प्रायश्चित और तपस्या करनी चाहिए। तो इस भौतिक संसार में एक भक्त के लिए सबसे बड़ी तपस्या है सुबह उठना, है ना, और अभी तो विंटर्स में सुबह उठना ये बहुत ही बड़ी तपस्या हो जाएगी। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं इस्कॉन के भक्त ना सारे के सारे प्रसाद खाते हैं घी का और बढ़िया, और काम धंधा कुछ नहीं है और खाते हैं प्रसाद, इतना सारा थाली भर के भात खाते हैं, चावल खाते हैं, मिठाई खाते हैं, और इसीलिए सब इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो उनको बोलना चाहिए, बोले आप लोग तपस्या तो करते नहीं हो, ये जप माला लेके घूमते रहते हो और बस बोलते हो हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहिए कि ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ में एक दिन गुजारिए। ऐसा किया भी था, एक भक्त को बोला तो उसको मंदिर में रख लिया था द्वारका मंदिर में, और उसको बोले कि आप यहाँ पर रहिए पूरा दिन और फिर आपको पता चलेगा कि हम तपस्या करते कि नहीं करते। 4:30 बजे जब उसको 4 बजे उठाया गया कि चलो मंगला आरती के लिए, तो बोला रात को ही उठना पड़ेगा उसके लिए रात होती है 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त को रात बोलता है, रात को उठना पड़ेगा, फिर भी आंखें मूंदता हुआ उठ करके नीचे आ गया। फिर उसके बाद में कीर्तन तक तो ठीक रहा, फिर उसके बाद जब जपा चालू हुआ 5:15 बजे तो फिर उसको बहुत नींद आने लगी। कहा मैं रूम में जाकर सो सकता हूँ? मैंने कहा नहीं नहीं अभी तपस्या चालू हुई है, जो आप कह रहे थे ना साधारण जप ही तो करते हो आप लोग बैठ के, अभी तपस्या चालू। फिर जब बहुत सुबह का उठा था 8 बजे तक क्लास में बैठने के लिए बोल दिया, बोला 1 घंटे बैठना पड़ेगा। मैंने कहा बैठना पड़ेगा। फिर वो कुर्सी पे जाके बैठ गया, फिर भी उसमें सोता रहा पूरा टाइम। उसके बाद बोलता है खाना कितने बजे मिला? मैंने खाना नहीं होता है, प्रसाद होता है। प्रसाद खाना का मतलब ही है, खाना नहीं चाहिए उसको, है ना। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन करें, तत्व में प्रसाद है, भोग भगवान के द्वारा भोगा गया वो खाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रसाद खाने बैठ गया तो बहुत सारा प्रसाद खाया, और फिर प्रसाद खाने के बाद कहता अब तो बहुत नींद आ रही है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं कहा अभी तो हमें प्रचार पे जाना है, चलो बैठो गाड़ी में हमारे साथ में। और फिर ले गए उसको, फिर जिधर जा रहा है वहां पे ऐसे कर मैं ना क्या कर रहे हो आप, सामने एक भक्त बैठे आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, आप सॉरी प्रभु जी मुझे आता नहीं कैसे बिहेव करना चाहिए, कह रहा है। मैंने कहा तपस्या चालू हुई है अभी हमारी, अभी खत्म नहीं हुई है, पूरा दिन अभी समाप्त हुआ, पूरा दिन घूमते रहे, कभी नोएडा लेके गए उनको कनॉट प्लेस, पूरा घूम के शाम को 7:30 बजे मंदिर में पहुंचे, घोरा आरती समाप्त हो रही थी। तो अब बोला कि अब मैं घर जाऊं? मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो पूर्ण, आपने बोला एक दिन रहूंगा आपके साथ में, अभी तो रात रुकना पड़ेगा। फिर 7:30 बजे के बाद में बोला प्रसाद पूरा दिन तो कुछ खाया नहीं आपने और हमें भी कुछ नहीं खिलाया, और अब रात को। मैंने कहा अब तो खत्म हो गया, यहाँ पे 5:30 बजे मिलता है मंदिर में। तो बोला क्या खाऊं? मैंने कहा ये देख लो आप कन्फेक्शनरी शॉप से कोई बर्गर पिज्जा वगैरह, तो मैंने वही खाया, उनको भी वही खिला दिया। अभी तो वो एकदम जिसे कहते हैं ना पागल हो गए थे, वो कह रहे हैं कि अरे प्रभु जी पैर छुलवा लो घर जाना, तो बहुत नींद आ रही है, अब मैं नहीं रह सकता आपके साथ में, एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा आप तो कह रहे थे, हम कह रहे अरे तपस्या, अरे सारी तपस्याओं से सबसे बड़ी तपस्या इस्कॉन के भक्त करते, मैं मान गया आज से कभी नहीं बोलूंगा और मैं आया करूंगा आपके क्लासेस में मिलने के लिए। तो इस तरह से उनको मालूम नहीं है कि एक भक्त जो है बड़े ही साधारण से सिंपल से हम सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी कर जाते हैं, लेकिन हमें भी लगने रहता है कुछ दिनों बाद हम क्या करते, कुछ भी तो नहीं, सुबह उठते जब किया क्लास सुनी प्रसाद खाया फिर प्रचार पे गए, ये क्या है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी ने दिया है अपने आप में, ये पूर्ण प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को करते रहें तो हम इस जो प्रमत्ता है, जो एक असुरों जैसी प्रवृत्ति जिसका वर्णन यहाँ प्रभुपाद कर रहे हैं, उससे हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं ये ब्रह्म सुख है, अगर भक्ति का जो ब्रह्म सुखायम तो अनंतम, ये आत्मा का जो सुख है, ब्रह्म मतलब आत्मा का जो सुख है ये अनंतम है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपादम पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत के स्वाद का पग पग पर वृद्धि होती जाएगी, और उनके लिए पदम पदम यत विपदम, और हमारे लिए पदम पदम आनंदम बुद्धिवर्धनम, है ना। हमारा बढ़ता जाएगा उनका घटता जाएगा, उनको विपदा मिलेंगी हमको आनंद मिलेगा। तो ये तभी कर सकता है व्यक्ति जब शारीरिक ये जो है ना भौतिक शरीर की दोष दृष्टि से और अपने को शरीर मानने की प्रवृत्ति से बाहर आए। इसलिए प्रभुपाद जी हर लेक्चर में बोलते हैं आई एम नॉट अ बॉडी आई एम अ सोल। इसलिए हमको जानना चाहिए हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। और प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो इतना ज्यादा कामुक था कि उनके शहर में एक वैश्या रहती थी, और उस वैश्या के प्रति इतना आकर्षित था, उसका शरीर रोगी था और वो बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी उसको यही आकर्षण था कैसे भी करके मैं इस वैश्या का भोग कर सकूं, है ना। तो जब पता चला कि उस वैश्या का कि वो कितना चार्ज करती हैं उनके पास जाने के लिए, तो पता चला 1000 हीरे के टुकड़े वो चार्ज करती हैं उनके पास जाने के लिए, इतना खर्चा करना पड़ेगा। अब एक हीरा सोचे कितना महंगा, 1000 हीरे के टुकड़े मतलब सिर्फ वो राजा धीराजा लोग ही उनके पास जा सकते हैं। और ये गरीब व्यक्ति बोला, रोज भगवान को प्रणाम भी करता है, हे प्रभु मेरी एक इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, मतलब कैसी तुच्छ इच्छा रख के बैठा है। इसीलिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी हर इच्छा पूर्ण नहीं करते, अगर वो हर इच्छा पूर्ण करने लगे तो यहाँ पर ना लड़ाई झगड़े हो जाएंगे मंदिर के बाहर ही यहाँ पर, क्योंकि मन में कैसा कैसा चलता है, कोई छोटी सी चीज हमारे विपरीत बोल दे मन में आता है तेरा तो मर्डर कर दूं, ऐसा मन में आता है। लेकिन मन की इच्छा अगर पूरी कर दे, सामने भक्त का मर्डर हो गया तो फिर तो एकदम पूरा कोहलम मच जाएगा पूरे एरिया के अंदर, क्या हो गया, जो सोचते हैं वही हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं आई डोंट गिव यू वॉट यू डिजायर, आई गिव यू वॉट यू डिजर्व, मैं वो नहीं देता हूँ जो आप इच्छा करते हो, मैं वो देता हूँ जो आपके लिए सही है। इसीलिए भगवान देने में कभी कभी हमको लगता है भगवान कुछ देते नहीं, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो ये जो पुरुष था रोज भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे को ना एक स्त्री का भोग करने को मिल जाए, तो उसकी पत्नी कहती है आप बहुत दुखी रहते हैं। कहा मैं इससे दुखी रहता हूं क्योंकि मुझे ये स्त्री का भोग करने का मन है लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो उसकी स्त्री जो है वो पूरी पतिव्रता थी, उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगी और आपके लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। वहां जाती है और उस वेश्या को बोलती हैं कि ऐसे ऐसे मैं आपके यहाँ सेवा करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, कितना पैसा लोगी? कहा कोई पैसा नहीं, मैं फ्री में सेवा करूंगी, फ्री में कपड़े धोना, फ्री में बर्तन धोना, फ्री में घर में झाड़ू पोछा लगाना। ये सब करते करते एक दिन वो बोली कि क्या कारण है कि आप आती हो रोज बिना पैसे के? आज हर व्यक्ति एक एक कदम पर पैसा चाहता है ना, कि बस एक कदम रखो और पैसा मिल जाए। तो ऐसी अवस्था में तुम ऐसी कैसे हो, फ्री में सेवा करती हो, मुफ्त सेवा? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जो इच्छा है वो आपसे चाहती हूँ, कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहा नहीं। कही इच्छा है कि मेरे पति आपके शारीरिक सुख को भोगना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप उनको ले आइएगा, मैं उनको इसके बारे में ज्ञान दूंगा। कहा लेकिन हम लोग बहुत गरीब हैं, आपका जो चार्ज है 1000 जो ये टुकड़े चांदी अपने हीरे के, ये हम नहीं दे सकते। कहा ठीक है तुम ले आना, क्योंकि तुमने मेरी फ्री में सेवा करी है तो मैं फ्री गाइडेंस दूंगी। तो अपने पति को ले आती है रोगी अवस्था में, उसको व्हील चेयर पर बिठा करके लेके आती है। और जब वो आई तो वेश्या के सामने आती, वेश्या कहती है कि यही आपके पति? कहा हाँ। वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि आज मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है। तो उनके सामने दो प्यालों में, दो कटोरियों में, एक लोहे की कटोरी में और एक सोने की कटोरी में खीर लेके आती है। कहा ये लो खीर खा लो। तो वो वैसे ही सोने की कटोरी वाली खीर को पहले खाता है और फिर लोहे की कटोरी वाली खीर को खाता है। और फिर वो कहती है अब आप बताइए इन दोनों खीर में से कौन सी खीर ज्यादा स्वादिष्ट थी? कहा दोनों खीर का स्वाद तो समान था। उसने कहा कि अरे एक लोहे की कटोरी में थी और एक सोने की कटोरी में, कोई भेद नहीं था? कहा नहीं, खीर का स्वाद तो समान था। तो उसने कहा हाँ, वैसे ही जैसे कटोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आप देखिए जीवन का जो यौन सुख है वो चाहे कुरूप स्त्री के साथ हो या सुंदर स्त्री के साथ हो, वो वैसा ही रहने वाला है। इसलिए तुमने जो मेरी अपने शरीर का, अपने भगवान की भक्ति का, अपने जीवनचर्या का जो तुमने एक एक दिन करके नष्ट कर दिया है सिर्फ इस कारण से कि तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो अपने अपने समय को निरर्थक रूप में सब व्यर्थ कर दिया है। इसलिए अब जाओ और उन भगवान से प्रार्थना करो, उनका भजन करो, हो सकता है तुम इस प्रवृत्ति से बाहर निकलो। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं ऐसे करके वो व्यक्ति की समझ में आया कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बोलते रहते पता नहीं किससे विवाह हो गया मेरा, है ना, कैसा घर मिल गया मुझे, मैं कैसे सिचुएशन में हूं। तो सिचुएशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्म सुखाय तु अनंतम, अगर आत्म दृष्टि से देखें तो यहीं पर ऐसा सुख प्राप्त हो सकता है जिससे फिर आप सदा सतोगुण के अंदर रह सकते हैं। हरे कृष्णा, सदा यही बोलते रहिए, भगवान के नाम का जप करते रहिए। ये आज्ञा, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौर निताय की, पद पावन श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।